मैं भी विकास दुबे, बीए पार्ट टू, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अब हम समाजशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र सामाजिक आंदोलन के श्रम आंदोलन अथवा श्रमिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। श्रम आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा। श्रम आंदोलन का अर्थ है श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों तथा हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया गया संघर्ष। कुछ प्रमुख विद्वानों ने श्रम आंदोलन की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से की है। जी आर कॉमन्स के अनुसार, श्रम आंदोलन से आशय श्रमिक की उन समस्त संगठित क्रियाओं से है जो तत्काल या निकट भविष्य में उनकी दशाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए की जाती है। लेबर मूवमेंट्स मीन्स ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ वेज अर्नर्स टू बेटर देयर कंडीशंस आइदर इमीडिएटली और इन द मोर और लेस डिस्टेंस फ्यूचर। जी डी एच कोल ने लिखा है कि श्रम आंदोलन का आशय श्रमिकों द्वारा अपने रहन सहन का स्तर सुधारने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले संगठित एवं निरंतर प्रयास से है। लेबर मूवमेंट में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज एंड कंटिन्यूअस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ वेज अर्नर्स टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ओवर ए नेशनल एरिया। हेनिमन एवं जूनियर डेड योडर के अनुसार, श्रम आंदोलन का तात्पर्य श्रमिकों के उन निरंतर रहने वाले संघों से है जो केवल श्रमिकों से संबंधित हो तथा जिनका उद्देश्य श्रमिकों की अवस्था एवं स्थिति को सुधारना है। लेबर मूवमेंट्स मीन्स ए कंटिन्यूइंग एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स लिमिटेड टू एम्प्लॉयज फॉर ए पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द स्टेटस एंड लॉट ऑफ वर्कर्स। डेडियोडर के अनुसार, श्रम आंदोलन शब्द सामान्यतः श्रमिकों के विभिन्न प्रकार के समस्त दीर्घकालीन संगठनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो औद्योगिक या अर्ध औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। द टर्म लेबर मूवमेंट इज जनरली अप्लाइड टू ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स दैट अपीयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड और पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक्स। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर श्रम आंदोलन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। श्रम आंदोलन वह सामूहिक एवं सतत प्रयास है जो श्रमिकों द्वारा संगठित होकर अपने जीवन स्तर में सुधार करने, कार्य दशाओं में सुधार करने एवं सेवा योजकों की शोषणकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। श्रम आंदोलन की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मूवमेंट्स। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम श्रम आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास होता है। पहला, श्रम आंदोलन का उद्देश्य श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना होता है। दूसरा, श्रम आंदोलन श्रमिकों का संगठित एवं सतत प्रयास होता है। तीसरा, श्रम आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में प्रयास में संबंधित होता है। चौथा, श्रम आंदोलन एक दर्शन है जिसे समझकर श्रमिक अपना विकास कर सकते हैं। पांचवा, श्रम आंदोलन श्रमिकों में आत्म जागृति एवं आत्मशक्ति को विकास करने का एक सशक्त साधन है। छठा, श्रम आंदोलन की प्रकृति सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक देश के प्रत्येक उद्योग में श्रम आंदोलन किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सातवां, श्रम आंदोलन औद्योगिकरण का ही परिणाम है। श्रम आंदोलन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत श्रम संघ, श्रम सन्निमय, श्रम प्रतिनिधित्व, श्रम कल्याणकारों का सम्मिलित किया जाता है। नौवा, श्रम आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र के सभी श्रमिकों के सामान्य हितों की पूर्ति से संबंध रखता है। दसवां, श्रम आंदोलन अलग अलग राष्ट्रों से भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखने को मिलता है। श्रम संघ की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। सिडनी एवं वेब के अनुसार, श्रमिक संघ मजदूरी करने वालों का एक अस्थायी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने कार्यों की दशाओं में सुधार करना अथवा उनको बिगड़ने से रोकना होता है। मिल्ले व बेल ने इस परिभाषा की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह परिभाषा पुरानी, अत्यधिक सीमित व गतिहीन है क्योंकि वर्तमान में एक श्रम संघ का कार्य अपने सदस्य के कार्य जीवन को देखने, बनाए रखने और सुधार करने से आगे भी निश्चित हो सकता है। रिचार्ड लिस्टर के अनुसार, यह मौलिक रूप से श्रमिकों का एक संघ है जिसका उद्देश्य अपने समुदाय के सदस्यों की रोजगार संबंधी दशाओं को स्थिर रखना और सुधारना होता है। ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज डिजाइन प्राइमरली टू मेंटेन और इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर। GDH कोल के अनुसार, सामान्यतः श्रमिक संघ का अर्थ एक या अधिक व्यवसायों से में श्रमिकों के एक ऐसे संघ से लगाया जाता है जो अपने सदस्यों के उनके दैनिक कार्यों से संबंधित आर्थिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि करने से उद्देश्य से संचालित किया जाता है। ट्रेड यूनियन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन और मोर ऑक्यूपेशन एज एसोसिएशन कैरीड ऑन मेनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड एडवांसिंग द मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद देयर डेली वर्क। GDH कोल। विवी गिरी ने लिखा है, श्रमिक संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठनों से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। एसी जोन्स का मत है कि एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का संगठन है, मालिकों सहभागियों अथवा निजी श्रमिकों का नहीं। उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान से देखने पर उनमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। सभी परिभाषाओं के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होता है। पहला, श्रम संघ मजदूरों का एक संगठन है। श्रम में श्रमिकों की सामूहिक शक्ति निहित होती है। तीसरा, संघ की सदस्यता ऐच्छिक होती है। संघ का मूल उद्देश्य सेवायोजकों से अपने हितों की रक्षा करना होता है। आजकल श्रमिक संघ अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उन समस्त कार्यों को किसी परिभाषा की परिधि में बांधना संभव नहीं है और ना आवश्यक है। कुछ कार्य समूह बनाकर अपने सब प्रकार के हितों की रक्षा करना ही है। श्रम संघ की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, श्रम संघ मजदूरी वेतन और शुल्क उपार्जन करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो मूलतः समग्र रूप से अपने सदस्यों और व्यापार अथवा रोजगार के हित के उद्देश्य से संगठित किया जाता है और वह मालिक के साथ साथ संबंधों में प्रतिनिधित्व करता है। श्रम संघों के उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। कार्ल मार्क्स व एंजल्स जैसे भौतिकवादी विचारक श्रमिक संघों को क्रांति के एजेंट के रूप में और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में इन्हें एक दल के रूप में स्वीकार करते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देता है। वेब ने श्रमिक संघों को उद्योग के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक विद्वान के विस्तार के रूप में स्वीकार किया है। कोल के विचार में श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है। लास्की के मत में श्रमिक संघों के उद्देश्यों के मौलिक रूप से आर्थिक होने के बावजूद भी सामाजिक उद्देश्यों में वृद्धि होने के साथ साथ बहुमुखी होते जा रहे हैं। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने श्रम संघों के निम्न उद्देश्य बताए हैं। पहला, मजदूरी निर्धारण एवं उसमें सुधार, कार्य के घंटों एवं कार्य की दिशाओं का निर्धारण एवं सुधार, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रयास तथा बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय के फलस्वरूप श्रमिकों को अपना बढ़ा हुआ भाग दिलाने का प्रयास करना। दूसरा, श्रमिकों के लिए उपलब्ध अवसरों को प्राप्त करना। श्रम संघों का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की दशाएं स्थापित करना। तीसरा, प्रत्येक श्रम संघ श्रमिकों में अपना प्रभाव व्यापक करने का प्रयास करता है। इसके लिए वे श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता दिलाने का प्रयास करते हैं। क्लेग एंड फ्लिंट्स के अनुसार वर्तमान समय में श्रम संघों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन के सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र को व्यापक करना एवं नियंत्रण में भाग लेना। दूसरा, श्रमिकों की मजदूरी तथा कार्य की दशाओं का बचाव करना एवं उनमें सुधार करना। तीसरा, उद्योग तथा समाज के नागरिक के रूप में कर्मचारियों की स्थिति को ऊपर उठाना। वर्तमान समय में जिन उद्देश्यों के लिए श्रम संघों की स्थापना की जाती है वे निम्नलिखित हैं। पहला, श्रमिक के मध्य बंधुत्व एवं सहकारिता की भावना का विकास करना। सदस्यों की सेवा सुरक्षा हेतु प्रयास करना। तीसरा, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि करना। चौथा, श्रमिकों को संगठित करना एवं उन्हें अपने हितों व अधिकारों के प्रति जागृत करना। पांचवा, श्रमिकों सेवायोजकों एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करना। छठवा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ एवं अन्य लाभ कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास करना। सातवां, श्रमिकों को उचित एवं पर्याप्त मजदूरी दिलवाना, सवैतनिक अवकाश दिलाना एवं कार्य के घंटों में कमी करवाने हेतु प्रयास करना। आठवां, विभिन्न प्रकार की सभाओं, विचार विमर्श एवं अन्य स्थानों पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना। नौवां, आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल घोषित करना, उनका संचालन करना एवं सेवायोजकों से विचार विमर्श एवं समझौता कर झगड़े को समाप्त करवाना। श्रमिकों के मध्य बंधुत्व एवं सहकारिता की भावना का विकास करना। श्रमिकों की पदोन्नति एवं उनके प्रशिक्षण के अवसरों का विकास करना। 11वां, कोष का निर्माण करना तथा श्रमिकों के कष्ट एवं कठिनाई के समय उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। 12वां, सामाजिक आर्थिक नीतियों के निर्माण में सक्रिय भाग लेकर उन्हें प्रभावित कर अनुकूल करना। 13वां, उद्योग एवं समुदाय के प्रति श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। 14वां, सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर वैधानिक सलाह देना तथा न्यायालय में विवाद प्रस्तुत होने पर कानूनी सहायता प्रदान करना। 15वां, राष्ट्र के विकास में सहायक योगदान देना तथा प्रोत्साहित करना तथा श्रमिकों के सम्मान को बढ़ाना। श्रम संघों के प्रकार, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। जॉन प्राइस का मत है कि आज के संघ के अपने कार्यकलाप श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा कार्य की दशाओं में सुधार करवाने तक ही सीमित नहीं है, वरन वे उन सभी कार्यों से संबंधित हैं जिनसे श्रमिक प्रभावित होते हैं, चाहे वे श्रम शक्ति के रूप में प्रभावित होते हों अथवा श्रमिकों अथवा नागरिक के रूप में। श्रम संघों के कार्य को निम्नलिखित 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आंतरिक या लड़ाकू कार्य, इंट्राम्यूरल और फाइटिंग फंक्शंस। दूसरा, बाह्य कार्य, एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस। तीसरा, राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। चौथा, प्रतिनिधित्वात्मक कार्य, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस। पांचवा, विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल फंक्शंस। पहला, आंतरिक अथवा लड़ाकू कार्य। इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत श्रमिक संघ श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई का लक्ष्य होता है अ, उचित मजदूरी, ब, कार्य और सेवा की अच्छी शर्तें, स, मालिकों के अच्छे व्यवहार, द, काम के कम घंटे व उद्योग के प्रबंध में हिस्सा। इस लड़ाई में वे अनेक अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे हड़ताल, बहिष्कार, सामूहिक सौदेबाजी, समझौता वार्ताएं आदि। सामान्यतः लड़ाकू कार्यों में निम्न क्रियाएं की जाती हैं, अ, सामान्य हित में सामूहिक सौदेबाजी करना, ब, व्यक्तिगत हित के लिए विचार विमर्श करना, स, आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना। दूसरा, बाह्य कार्य अथवा मित्रवत कार्य। इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो पर श्रमिक परस्पर एक दूसरे के जीवन को सुधारने के उद्देश्य करते हैं। जे आई रोपर ने लिखा है कि एक श्रमिक संघ एक नगर पालिका के सदृश है जिसका उद्देश्य नागरिकों का जीवन सुधारना, अर्थात जिस प्रकार नगर पालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि की सेवाओं की व्यवस्था करती है, श्रमिक संघ भी करता है। इन कार्यों को निम्नलिखित कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। का, शिक्षा संबंधी कार्य, महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय व वाचनालय आदि की व्यवस्था करना। ख, आर्थिक कार्य, सहकारी समितियों का निर्माण करना जो सस्ते अनाज, मकान, ऋण दिलाने से संबंधित कार्य करती है। अनाथ गरीबों की सहायता का प्रबंध करना। ग, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, दवाई, इलाज, सफाई की व्यवस्था करना व शिशु एवं मातृ कल्याण करना। घ, मनोरंजन, खेलकूद, व्यायाम, टूर्नामेंट आदि का प्रबंध करना व क्लब इत्यादि का संगठन करना। अंग, सांस्कृतिक कार्य, लोक नृत्य, संगीत, कला, नाटक इत्यादि। भारत में भी श्रम संघ इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं। तीसरा, राजनीतिक कार्य, आर्थर गोल्डबर्ग के अनुसार संघ सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे देश के राजनीतिक अधिकारों के निश्चित राष्ट्रीय कार्यक्रम को आश्रय प्रदान करें तथा अपने संघ को देश के राष्ट्रीय जनसंघों के सदस्य वर्गों के साथ चलाने के लिए दृढ़ता से कहें। श्रमिक संघ के राजनीतिक कार्य निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। का, विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजना, नगर पालिकाओं में अपना प्रभाव उत्पन्न करना। ख, चुनावों के द्वारा स्वयं अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना ताकि सत्ता में आकर कुछ और अधिक अच्छा कार्य किया जा सके। जैसा कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में है, ऐसा केवल औद्योगिक देशों में संभव है। भारत में भविष्य में ऐसा होना संभव नहीं है। ग, श्रमिकों के हित के अधिनियमों को बनवाना। भारत में अनेकों अधिनियम श्रमिक आंदोलन के फलस्वरूप बने हैं। श्रम संघ किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में पनप सकते हैं, चाहे वह पूंजीवाद हो अथवा साम्यवाद हो। पूंजीवाद के अंतर्गत जहां श्रम संघों का मुख्य कार्य मजदूरी कार्य की शर्तों एवं कर्मचारी वर्ग की मांग और पूर्ति से संबंधित विषयों के लिए सेवायोजकों के समक्ष मांग रखना, साम्यवादी देश में श्रमिक संघ उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने में, अनुशासन बनाए रखने में बल देते हैं और समाज कल्याण एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। साम्यवादी देशों में मजदूरी की मांगों के समर्थन में हड़तालों का सहारा श्रमिक संघ नहीं लेते। चौथा, प्रतिनिधित्वात्मक कार्य, सेवायोजकों के साथ सौदा करने तथा अन्य विविध कार्यों के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य श्रम संघों को करना पड़ता है। इसी प्रकार न्यायालय में चलने वाले विवादों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघ द्वारा किया जाता है। श्रम संघ सरकार द्वारा अथवा सेवायोजकों द्वारा बनाई जाने वाली समितियों में भी अपने प्रतिनिधि भेजकर श्रमिकों को का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। पांचवा, विकासात्मक कार्य, आधुनिक युग में श्रम संघ श्रमिकों के हित साथ साथ संपूर्ण समाज एवं देश के हितों में तथा कुछ विकासात्मक कार्यों में योगदान दे सकते हैं। देश की रक्षा एवं विकास में भी योगदान दे सकते हैं। भारत में श्रम संघों के उद्देश्य एवं कार्य। एम्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार संघों को श्रमिकों के हितों की रक्षा, रोजगार एवं कार्य की दिशाओं में सुधार तथा उनके हितों में वृद्धि करनी चाहिए। गौड़ कार्य भी है। लेकिन ये गौण कार्य मूल उद्देश्य के नीति विरुद्ध नहीं होने नहीं चाहिए। भारतीय श्रम संघ उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला, अपने सदस्यों के लिए उपयुक्त मजदूरी, अच्छी कार्य दशाएं तथा अच्छी रहन सहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरा, श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करके उन्हें उद्योग में सहभागी के रूप में तथा उस समाज के अच्छे नागरिकों के रूप में लाना। श्रमिकों द्वारा उद्योग पर नियंत्रण प्राप्त करना। आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय सामूहिक रूप से संगठित प्रबंधकीय षड्यंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना। श्रमिकों में उत्तरदायित्व तथा अनुशासन के वहन करने की योग्यता उत्पन्न करना। श्रमिकों में आत्मबल जागृति करना कि वे केवल मशीन के पुर्जे मात्र नहीं है। सत्वा, श्रमिकों की नैतिक उन्नति के लिए कल्याणकारी करना।
भारत में श्रमिक संघ आंदोलन। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के पिता NM जोशी ने कहा था, स्वतंत्र प्रतियोगिता और पूंजीवादी नियंत्रण की वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत सेवा योजकों और कर्मचारियों की अभिरुचियों में स्पष्ट संघर्ष है। जोशी का यह मत कार्ल मार्क्स के इस विचार के सदृश ही है। श्रमिक संघ प्रारंभिक स्थिति में श्रमिकों द्वारा पूंजीवादी स्पर्धा को दूर करने अथवा कम से कम ऐसे अनुबंधित तर्कों को जो उन्हें नग्न गुलामी की स्थिति से आगे बढ़ा सकते हैं प्राप्त करने के लिए इसे नियंत्रित करने हेतु स्वतः किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। भारत में आधुनिक अर्थ में श्रमिक संघ आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ से होता है, यद्यपि इसके अंकुर निसंदेह 19वीं शताब्दी के अंत में अंकुरित हो चुके थे। सुविधा की दृष्टि से भारतीय श्रम आंदोलन को निम्न चार कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, श्रम संघ आंदोलन का प्रादुर्भाव। अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी श्रमिक आंदोलन का जन्म एवं विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। सर्वप्रथम 1875 में बंबई में सोराबजी शाहपुरी ने श्रम की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसी वर्ष बंबई में कारखाना आयुक्त नियुक्त किया गया। सन 1881 में कारखाना अधिनियम बना। सन 1884 में द्वितीय बंबई कारखाना के आयुक्त नियुक्त हुए। सन 1884 में नारायण मेघाजी लोखाड़े ने बंबई के मजदूरों का एक सम्मेलन बुलाया था और उन्होंने ही 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन नामक मजदूरों का एक संगठन स्थापित किया। इस संघ की स्थापना से भारतीय श्रमिकों में श्रम संघ का इतिहास आरंभ होता है। इसी समय श्री लोखाड़े ने दीनबंधु नामक एक पत्र निकाला जिसके माध्यम से श्रमिकों की मांगों को उनके अधिकारियों व सरकार तक पहुंचाया जाता था। सन 1891 में कारखाना अधिनियम पास हुआ। सन 1897 में कारखाना अधिनियम समिति बनी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतवर्ष में श्रमिक संघों का जन्म हुआ, परंतु उस समय के श्रमिक संघ समुचित रूप से संगठित नहीं थे। श्रम संघ आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार थी। क, श्रमिकों में यह भावना उत्पन्न नहीं हो पाती थी कि आंदोलन के द्वारा उन्हें अपने जीवन में क्रांतिकारी सुधार लाना है। ख, यह आंदोलन स्वतः ही विकसित हो गया था। इसका विकास विभिन्न भारतीय उद्योगों में समान रूप से नहीं हो पाया था। ग, श्रमिक संघ समुचित रूप से संगठित नहीं थे। दूसरा, श्रम संघों की धीमी प्रगति का युग। सन 1909 में स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप श्रमिकों में राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न केंद्रों में श्रम संघों की स्थापना हुई, जैसे 1903 में प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता, सन 1907 में बॉम्बे प्रिंटर्स यूनियन, सन 1909 में कामगार हित बंधक सभा और सन 1910 में सोशल सर्विस लीग आदि। इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम था कि 1911 में पुनः कारखाना अधिनियम पारित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, जबकि श्रमिकों की मजदूरी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इस महंगाई के कारण श्रमिकों में बहुत असंतोष था। इसी समय हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी श्रमिकों के संगठन में रुचि दिखलाई। उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए। उनसे भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन को प्रेरणा मिली। देश में राजनीतिक जागृति और सन 1917 में रूसी क्रांति ने भी श्रमिकों को संगठित होने के लिए उत्साहित किया। श्रम संघों के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार किया गया। श्रम आंदोलन अथवा यह उल्लेखनीय है कि अभी तक श्रम संघों ने केवल वैधानिक तरीकों पर ध्यान दिया था। वस्तुतः श्रमिक संघ श्रमिकों के नहीं बल्कि श्रम नेताओं के संगठन थे, जो समाज सुधारक होने के नाते श्रमिकों के कल्याण के लिए हुए एवं उनकी दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे। तीसरा, श्रम संघों की तेजी से प्रगति का युग। प्रथम महायुद्ध के पश्चात देश में श्रम संघ आंदोलन का तेजी से विकास हुआ। 1918 में मद्रास श्रम संघ की स्थापना हुई। सूती मिलों में काम करने वाले प्रायः सभी श्रमिक इस संस्था के सदस्य बन गए। सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि यह श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सके। 1921 के गांधी जी के असहयोग का प्रभाव भी औद्योगिक श्रमिकों पर काफ़ी गहरा पड़ा। उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप अहमदाबाद वस्त्र श्रम संघ की स्थापना हुई। इस संगठन ने श्रमिकों के संघर्ष को अहिंसात्मक ढंग से निपटाने पर अधिक बल दिया। सन 1919 में और 1923 के बीच अनेक श्रम संघों की स्थापना की गई, किंतु उनके सम्मुख कई कठिनाइयां थीं, जैसे निश्चित संविधान का अभाव, पैसे की कमी, पदाधिकारियों में काम के उचित विभाजन का न होना आदि के कारण इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ थोड़े से श्रम संघ व्यवस्थित थे, जैसे जमशेदपुर श्रम संघ, बम्बई सूती वस्त्र संघ, गिरनी कामगार मध्यमंडल बम्बई आदि। इनके सदस्यों की संख्या कई हजार से अधिक थी। सन 1922 में तीन महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई, श्रमिक समिति, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तथा ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ मैन फेडरेशन। 1936 में मजदूर संघ अधिनियम पास हुआ, जिसमें पंजीकृत मजदूर संघों को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के इतिहास में इस अधिनियम का प्रभाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही श्रमिक संघ का पंजीयन भी प्रारंभ हो गया और श्रम संघों के निर्माण में तेजी आई। सन 1926 के बाद श्रम आंदोलनों का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में पहुंच गया। ये साम्यवादी श्रम संघ आंदोलन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। सन 1926 में श्रम आंदोलन में दो दल हो गए, एक साम्यवादियों का और दूसरा सुधारवादियों का। दोनों दलों में खुला संघर्ष होता रहा और अनेक हड़तालें भी हुईं। सन 1928 में झरिया में साम्यवादियों ने अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इससे सरकार सतर्क हुई और अनेक साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अनेक वर्षों तक कारागार में रहना पड़ा। श्रमिकों की समस्याओं के सुधार की दृष्टि से 1928 में शाही कमीशन की नियुक्ति की गई। 1929 में अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस का 10वां अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इसने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक नीति अपनाई। चौथा, वर्ग चेतना एवं एकता का युग। श्रम संघ आंदोलन की चौथी अवस्था 1930 से आरंभ होती है, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए नेताओं ने श्रमिकों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। साथ ही मंदी के कारण अनेक श्रमिकों को निकाल दिया गया तथा काम पर लगे श्रमिकों की मजदूरी में कटौती की गई। श्रमिकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और हड़तालें की, परंतु असंगठन के कारण उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इस अवस्था की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पुनः फूट पड़ गई और देश पांडे तथा खांडे के नेतृत्व में अलग से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई, जो 1932 में पुनः अपनी पितृ संस्था से मिला दी गई। ख, रेलवे में काम करने वाले श्रमिकों ने अपना अलग संगठन बना लिया। ग, 1931-32 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और नेशनल नामक नई संस्था का जन्म हुआ। घ, 1938 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विलयन हो गया। अंग, 1935 में देश में राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य एक नया कानून बनाया गया, जिसके अनुसार प्रांतों को अधिक मात्रा में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। सन 1955 के कानून के अंतर्गत श्रमिकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया और लोकप्रिय सरकार के गठन के पश्चात श्रम कल्याण संबंधी नीतियों का निर्माण किया गया। 1939 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई क्षेत्र में भारतवर्ष द्वारा द्वितीय महायुद्ध में सहयोग प्रदान करने के संबंध में उदासीनता के निर्णय पर उग्रवादियों को M.N. राय के नेतृत्व में इस संगठन से अलग होना पड़ा। इन लोगों ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का निर्माण किया। 1944 में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के प्रतिनिधि बारी बारी से प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सभा में भाग लें। ज, युद्धकाल में श्रमिकों से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रतिरक्षा नियम पास कर दिया और संयुक्त सलाह की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा कल्याण समितियों की स्थापना की। झ, सन 1944 में सरकार ने भ्रम से श्रम से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए श्रम जांच समिति की स्थापना की। अंग, सन 1946 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस व इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर में प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की विजय हुई। संक्षेप में श्रम संघ आंदोलन की चौथी अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार थीं। क, श्रमिकों में एकता और जागरूकता की भावनाओं का अधिक विकास हुआ। ख जनता में श्रम समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता का विकास हुआ। ग द्वितीय महायुद्ध के कारण श्रम संघ आंदोलन को अधिक सफलता मिली। घ श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए पहली बार कल्याण समिति की स्थापना हुई। पांचवा, 1947 से वर्तमान समय तक भारतीय श्रम आंदोलन के इतिहास में आधुनिक काल स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होता है। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने शासन सूत्र अपने हाथ में लिया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश में बड़ी भारी मात्रा में हड़तालें हुईं। इसका कारण यह था कि श्रमिक मजदूरी और कार्य की अच्छी दशाएं प्राप्त कर सकेगा पूरी नहीं हो सकी। श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य 1947 में औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत सुरक्षा कानून की हड़ताल संबंधी धाराएं सम्मिलित की गई। सन 1948 में पुनः एक विभाजन हुआ, समाजवादी अलग हो गए और उन्होंने हिंदू मजदूर सभा के नाम के से अपना एक अलग संगठन बनाया। 1947 में प्रोफेसर के टी शाह और श्री एम के बोस ने संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस के नाम से अलग संगठन की स्थापना की। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संगठन पर समाजवादियों का अधिकार हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि श्री जयप्रकाश नारायण उसके सभापति हुए। श्री हरिहर नाथ शास्त्री की अध्यक्षता में रेलवे कर्मचारियों का एक और संगठन बना, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संगठन रखा गया। श्रम और पूंजी के संबंधों में एक नया मोड़ 1967 के चुनाव के बाद आया, जब भारत बहुत से राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई। फलतः कई राज्यों में मिलीजुली सरकारें बनाई गईं, जिनमें साम्यवादी, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी दोनों ही सम्मिलित थे और श्रम के संबंध में इनकी नीति अत्यंत उग्र थी। पश्चिमी बंगाल में सरकार ने श्रमिकों को अत्यंत उत्तेजित किया, जिसके परिणामस्वरूप अग्निकांड, गोलाबारी इत्यादि हिंसात्मक घटनाओं के परिणामस्वरूप 1967 और 68 में पश्चिमी बंगाल में अनेक उद्योग बंद हो गए और जनजीवन भी संकट में पड़ गया। इसी समय से श्रमिकों ने अपनी मांग मनवाने की एक उग्र प्रणाली को काम में लाना शुरू किया, जिसे घेराव कहते हैं। श्री वी वी गिर का मत है कि यह प्रणाली श्रम आंदोलन के लिए बड़ी घातक है। घेराव के अंतर्गत मजदूर एकत्र होकर कारखाने के अधिकारियों को घेर कर कैद कर लेते हैं और इस प्रकार उन्हें बाध्य करते हैं कि उनकी मांगें मान ली जाए। संघों ने तीव्र उन्नति की है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, श्रमिक अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए अपनी आय को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। दूसरा, राजनीतिक दल श्रम संघों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए होड़ करने लगे। तीसरा, केंद्रीय और राज्य सरकारों ने सामुदायिक सौदे की सुविधा का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई कानून पास किए। भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन की समस्याएं, कठिनाइयां एवं दोष। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की धीमी प्रगति के कारण, कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक हमारे देश में श्रमिक संघ ने काफी उन्नति कर ली है, फिर भी इसके विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ दोष तथा कुछ त्रुटियां हैं, जिनके कारण श्रमिक संघ ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी की अपेक्षित थी। रॉबर्ट्स के अनुसार भारत में श्रमिक संघ आंदोलन इतना सुदृढ़ नहीं है जितना उसे होना चाहिए। भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन के तीव्र विकास में आरंभ से ही अनेक बाधाएं एवं कठिनाइयां रही हैं, जिन्हें हम दो शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, क आंतरिक बाधाएं और ख बाहरी बाधाएं। आंतरिक बाधाएं। पहला, श्रमिकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता। भारतीय श्रमिक अशिक्षित एवं अज्ञानी हैं, इसलिए वे अपनी समस्याओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते और भाग्य पर विश्वास करते हुए अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम श्रम संघों के तीव्र विकास की आशा कैसे कर सकते हैं? दूसरा, श्रमिकों की निर्धनता। भारतीय श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है, इस कारण हमारे अनेक श्रमिक तो चंदा ही नहीं दे पाते। आवश्यक धनराशि के अभाव में श्रमिक संघ प्रगति नहीं कर सकते। तीसरा, श्रमिकों की एकता में कमी। श्रमिकों में जाति, धर्म और भाषा की क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, जो संगठन के मार्ग में बाधक है। चौथा, श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। भारतीय श्रमिक स्वभाव से ही प्रवासी हैं, क्योंकि श्रमिक औद्योगिक केंद्रों में अस्थायी रूप से निवास नहीं करते, इसलिए वे श्रम संगठनों में रुचि नहीं लेते। पांचवा, उचित नेतृत्व का अभाव। भारत में श्रमिक संघों के संचालन करने वाले लोग श्रमिक नेता न होकर बाहरी व्यक्ति हैं, जिनका निजी स्वार्थ व विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। उन्हें श्रम समस्याओं में रुचि नहीं होती, वे दलगत राजनीति में फंसे हुए श्रमिकों का गलत पथ प्रदर्शन करते हैं। छठा, श्रमिकों में लोकतंत्र की भावना का अभाव। भारतवर्ष में श्रमिक संघों में लोकतंत्र की भावना का अभाव पाया जाता है। प्रायः बड़े बड़े निर्णय श्रमिकों की राय बिना ही ले लिए जाते हैं, इसलिए इन संघों में श्रमिकों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता। सातवां, संघों का छोटा आकार। श्री वीवी गिरी के अनुसार भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के अविकसित होने का एक प्रधान कारण अधिकांशतः श्रम संघों के आकार का छोटा होना है। आठवां, आंतरिक फूट। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का एक अन्य भारी दोष इनमें आंतरिक फूट है। एक ही उद्योग में विरोधी आदर्शों में विश्वास रखने वाले संघ पाए जाते हैं, जिनमें आपस में ही झगड़े होते रहते हैं। नौवां, रचनात्मक कार्यों का अभाव। भारत में अधिकांश श्रमिक संघ केवल संघर्षात्मक कार्य करने में ही व्यस्त रहते हैं। रचनात्मक कल्याण संबंधी कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन आदि की ओर उनका ध्यान अभी नहीं गया है, जिसके अभाव में श्रमिक संघ श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे। दसवां, काम करने की दशाएं। शहरों में श्रमिकों को कारखाने तथा गृहस्थी के कामों में इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि संगठन आदि कार्यों के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिल पाता। ग्यारहवां, पूर्णकालिक एवं वैतनिक अधिकारियों की कमी। भारतवर्ष श्रमिक संघों के संचालन करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें न तो इस कार्य के लिए वेतन मिलता है और न ही उसके पास अधिक समय है जो इन कार्यों के लिए दे सकें। बाहरी बाधाएं, मजदूरों से ठेकेदारों का विरोध। भारत में उद्योगों में भर्ती अधिकतर मध्यस्थों द्वारा होती है। ये मध्यस्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रमिकों में एकता की भावना उत्पन्न नहीं होने देते और सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि श्रमिकों में फूट पड़ी रहे और वे कभी संगठित न हो सकें। दूसरा, मालिकों का विरोध। कारखाने के स्वामी भी श्रम संघों को सहयोग देने के बजाय उनका विरोध करते हैं। वे यह नहीं समझते कि ये संघ अनुचित हड़तालों को रोकने में कितने सहायक हो सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में श्रमिक संघ आंदोलन के दोषों को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया गया है। श्रमिक संघ के अधिकतर राजनीतिक मनमुटाव, साधनों की कमी एवं श्रमिकों में एकता का अभाव आदि भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की प्रधान त्रुटियां हैं।